రామచంద్ర భగవానికి జై, శ్రీ ప్రభుపాదకి జై, గోగోవింద మహారాజ్కి జై, యోగిజీ మహారాజ్కి జై, శ్రీ నారాయణ మహారాజ్కి జై, గౌర భక్తవృందికి సాయి గౌరవ మహారాజ్కి జై. హరే కృష్ణ. బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెసిలిటీ వీఆర్ రన్నింగ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ లేట్ బికాస్ ఆఫ్ ది 3-4 days continuous festival, but we are in reality as devotees here in Kambhuna Church. We are very grateful that our Maharaj, Sri Narayan Maharaj, and other Swamis could come and inspire the devotees here. So Maharaj will be leaving soon on the way to the airport, going to Delhi and then to Mathura. And so before Maharaj leaves, just want to say we will start the glorification of Ramachandra, because we cannot speak Ramachandra's day. You know, Maharaj mentioned this briefly yesterday, that our main function was scheduled for today. That's the glorification of God Ramachandra, and our Yogi Maharaj has been wonderfully depicting about the pastimes of Ramachandra. So now let's share a few words from Narayana.
I think that you will all understand Hindi.
Yes.
Yes. Agyan timiran dharsya gyanam yana shalakaya chakshururin sanje tasmai shri gurave namah. वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ननाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय తదభక్తాయ నమః. సప్రథమ అప్నే పరమారాధ్యతమ శిశిల గురు పాద పద్మ నిత్య లీలా ప్రవిష్టోం విష్ణు పార్శ్వం భక్తి ప్రజ్ఞాన కేశవ గోస్వామి మహారాజీకే చరణో మే అప్నే కోటి కోటి దండోత్ ప్రణామ రూపీ శ్రద్ధాంజలి పుష్ప సంధాంజలి పుష్ప అర్పిత కర్తే హే ఔర్ పశ్చాత్ అప్నే శిక్షా గురు శిష్యమత్ నిత్య లీలా ప్రవిష్టోం విష్ణుపాద శిష్యమద్భక్తి వేదాంత స్వామి మహారాజ్ జో హమారే శిక్షా గురు థే ఉన్కే చరణ మే అప్ని శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పిత కర్తా హూం. తత్పశ్చాత్ అప్నే ప్రియ బంధు హమారే గురు భ్రాతా హీ శిల నిత్య లీలా ప్రవిష్ట శిశిల భక్తి గౌర గోవింద మహారాజ్ జీకే చరణ మే భీ అప్నా మే దండోత్ ప్రణామ నివేదన కర్తా హూం. आज रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में श्री रामचंद्र जी का महाराज दशरथ जी ने बहुत बड़ा भारी महोत्सव किया. आज वो महोत्सव का दिन है. मैं उनके संबंध में दो एक बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे उसको मैं थोड़ा सा बतला रहा हूँ. सबसे पहले ये बतलाऊँगा दसों दिशाओं में जिनका रथ जाता था इसलिए उनका नाम दशरथ है. दसों दिशाओं में दस जो इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय, इनको जो विजय करने वाला होता है वो दसों दिशाओं को जीत सकता है. इसलिए दशरथ महाराज जी अयोध्या धाम साकेत से जब राम आते हैं तो उसके पहले आते हैं और उन्होंने दसों दिशाओं को, दसों इंद्रियों को अच्छी तरह से जीत लिया था. तब वो रामचंद्र जी के पिता हैं, वो नित्य रामचंद्र जी के पिता हैं. ऐसा लिखा गया है कि महाराज दशरथ रामचंद्र जी के जन्म से पहले भ्रमण करते 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 कहीं कई कई देश में पहुंचे. यहाँ पर केकई के पिताजी राजा थे। उस समय केकई बहुत किशोरी सुंदरी 16 वर्ष की थी, बहुत ही अनुपम सुंदरी और रूपवती और गुणवती थी, मधुर वचन बोलती थी, सब सेवा में एक्सपर्ट थी। महाराज दशरथ वहाँ जब पहुँचे थके हुए थे चलते चलते, महाराज कैकेयी ने अपनी बेटी को कहा, जे बेटी कैकेयी इनका आदर सत्कार करना, हमारे घर में अतिथि हैं। उन्होंने खाने पीने स्नान इत्यादि सारी व्यवस्था उन्होंने की कैकेयी जी ने। जब सवेरा हुआ महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और कैकेयी नरेश के पास में पहुंच करके बोले, जी महाराज आप और हम तो मित्र हैं, आपसे एक मैं चीज चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जी क्या चीज़ चाहता है आप देंगे तो, आ तो बतलाओ तो सही क्या चीज़ चाहते हैं। मैं आपकी लड़की को चाहता हूँ कि अपनी मैं पत्नी उसे बनाऊँ, इसलिए आप अपनी लड़की को हमारे साथ में ब्याह दें। उन्होंने कहा, जी बात तो बहुत ठीक है, आप लोग अच्छे परिवार के हैं और आपका नाम पृथ्वी मंडल में है, मैं देना तो चाहता हूँ किंतु एक शर्त रहेगी, इस लड़की से जो बच्चा पैदा होगा वही राज्य का अधिकारी होगा, उसी को राज्य बनाना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। महाराज दशरथ जी हंस पड़े, हमने 359 हमारी शादियाँ हुई किंतु किसी को बच्चा नहीं, यदि सौभाग्य से आपके कहने से इसको बच्चा हो जाएगा तो वही गद्दी पर बैठेगा, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। बड़े प्रसन्न हुए, राजा ने उनकी शादी कर दी। किंतु याद रखना इस बात को, इसके गर्भ से पैदा हुआ बच्चा ही राज्य का अधिकारी होगा, याद है ना? हाँ हाँ बोलो, 3 बार बोलिए। कहने जी ठीक है, हमको स्वीकार, चले गए। बहुत दिनों तक लड़का नहीं हुआ, अंत में राज यज्ञ हुआ, यज्ञ से गोकर्ण जी ने उनको पुत्र संतानी में से एक नहीं बल्कि 4 हो गए, पहले रामचंद्र जी, इसके बाद में भरत जी, इसके बाद में शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इसकी कथाएं तो आप लोग जानते हैं। अब जबकि रामचंद्र जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हो गया जनकपुर में, और जब लौटे तो प्रजाओं की इच्छा हुई है रामचंद्र राजा हों, युवराज हों। राजा जीवित रहने पर युवराज का ही पदवी दिया जा सकता है, राजा तो वही रहेगा सम्राट, किंतु देखभाल सब कुछ करेगा युवराज। सब लोगों ने सोचा जैसे अब रामचंद्र जी को ही युवराज बनाना चाहिए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, वशिष्ठ जी को बुलाया, उन्होंने शुभ मुहूर्त कल के लिए रखा, जन्माष्टमी का जो भी कल दिन है रामनवमी के दिन, ये इसी दिन इनका शुभ राज तिलक दिया जाएगा। बड़े प्रसन्न सब राजा प्रजा सभी लोग प्रसन्न हैं। एकदम निर्णय कर लिया गया ये कल होगा राज्याभिषेक, और समस्त तीर्थों का जल, समुद्र का भी और कितने भी हैं प्रयाग इत्यादि तीर्थों के पानी लाए गए, अभिषेक होकर के रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाए। रात में कैकेयी ने, मंथरा ने कैकेयी को कहा, अरे भोली भाली लगने वाली बेवकूफ रानी, तुमको बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं, आज तक तो तू राज माता थी और रामचंद्र यदि राजगद्दी पर बैठ गया तो तू राजमाता नहीं रहेगी, तो दासी हो जाएगी, और तुम नहीं जानते होंगे कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। ये सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई कैकेयी और अपने गले का 9 लाख हार उसके गले में पहना दिया। अरे बड़ा शुभ संवाद सुनाया, इसमें बुरा होने का, राम तो हमारा भरत से भी अधिक प्रिय है। कहने भरत प्रिय है, तुम बेवकूफ है, तुम नहीं समझती, तो मेरी बात पर ध्यान देना, जरूर राम को गद्दी कभी नहीं दिले अन देना, नहीं तो तू रसातल में चली जाएगी, तुम्हारा बेटा है राम का दास होकर के रहेगा। बहुत समझाया, उसकी बुद्धि में नहीं, तुमको याद है 2 बातें तुमने, तुम्हारे पिताजी ने उनसे मांगा था, हम विवाह इसी समय में देंगे जबकि तुम्हारा लड़का राजगद्दी पर आएगा, और तुमने देवास्तु संग्राम में भी महाराज दशरथ को बचाया था, और उस समय में उन्होंने कहा था तुम 2 बार मांग लो, उन्होंने कहा समय आने पर मांग लूंगा, इसी समय में तुम 2 बार मांग लो, और इसी समय भगवान की जोग माया, रामचंद्र जी ने जोग माया से उसके अंदर में प्रवेश कराया। महाराज दशरथ को जब पता लगा जे कैकई दो बार मांग रही, उन्होंने कहा जी आपको याद है हमारे पिताजी ने आपसे प्रतिज्ञा की थी, अपने राम को कैसे जो राज बनाने का विचार किया, दूसरी बात आपने मैंने आपसे वर मांगा था देवासुर संग्राम में, वो वर ये है मैं अब मांगती हूं, मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे और रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो। रामचंद्र जी को ये सभी चीजें याद हैं, यदि रामचंद्र जी गद्दी पर बैठ जाते हैं सीता जी की चोरी नहीं होगी और असुरों का दलन नहीं होगा, आत्मधर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी और असुर धर्म बढ़ जाएगा। वो इसीलिए आए थे, किस लिए आए थे, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आए थे। यदि किसी प्रकार से हो जाता रामचंद्र जी राजा तो ये सब काम नहीं होता, असुरों का विनाश नहीं होता, धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती। राम को तो याद है इन्होंने जोग माया के द्वारा उसके मुख पर बैठा दिया, वो नहीं चाहती थी जो वर मांगे किंतु उसके मन में ऐसा हुआ जी पर बैठ करके उसने मंगा दिया वर। महाराज दशरथ तो सुन करके बड़े दुखी हुए। इसके बाद में कैसे कैसे बन गए आप लोगों को ये सब पता है, इस पर अधिक नहीं कहना चाहता, दो एक बातें वही कहना चाहता हूं जो शायद आप लोगों को पता ना हो। रामचंद्र जी के सीता जी का हरण हो गया है, जहां आज श्वेत बांध रामेश्वर है वहां पर सारी सेनाओं को लेकर के पहुंचे, सोचा जे पार कैसे करें, बड़ी मुश्किल समस्या थी कैसे पार। समुद्र को उन्होंने विनय किया, समुद्र नहीं सुना, धनुष मार लेकर के खड़े हुए, तुम्हें विदीर्ण करके सब पानी सुखा देंगे और चले जाएंगे। समुद्र वहां से निकल करके प्रार्थना किया प्रभु हमारी महिमा मत बिगाड़िए, आपने ही हमको गौरवान्वित किया है और आप ही मर्यादा को भंग कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा, इसलिए कोई उपाय कीजिए, आप नल लील को बुलाइए, उनको बर है जिस पत्थर को छू देंगे वो पानी में तैरेगा, कोई चीज नहीं डूबेगी, और उनके द्वारा पुल बनवाइए। ये ठीक है, पुल बनने लग गया, पुल करीब करीब तैयार हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। उस समय में रामचंद्र जी सोच रहे हैं ये बंदर कपी भालू ला रहे हैं पत्थर और नल नील छू देते हैं और वो पानी पर तैरता है और पुल करी कर तैयार हो गया, अच्छा मैं उठा करके एक पत्थर देखूं और पानी में फेंक दूं ये तैरता है कि डूब जाता है। उसने एक पत्थर लिया और चले गए झाड़ी की ओट में जो कोई ना देखे, और झाड़ी के अंदर में जाकर के उन्होंने एक पत्थर उठाया और लेकर के ऐसे छोड़ दिया, छप आवाज हुई और डूब गया। अब तो बड़ी ये चिंतित हो जा रही, हमने पत्थर छोड़ा ये डूब गया। हनुमान जी पीछे से देख रहे थे, देखा जी राम कहाँ गए, खोजते हुए देखा तो झाड़ी के अंदर में छिपे हुए एक पत्थर उठाया और वो फेंक दिया। हनुमान जी बोले जैसे प्रभु आप यहाँ पर आकर के पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, अब तो तू यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारी आने की जरूरत क्या है, मैं प्रभु आपके बिना रह नहीं सकता इसलिए आया, और देखा जी आपने पत्थर फेंका तो क्यों फेंका, तो मैं परीक्षा कर रहा था कि हमारा नाम लेकर के लोग पत्थर फेंकते हैं और वो उतराता है पानी के ऊपर में, और यदि मैं उठा करके फेंक दिया तो देखा जो वो छप करके पानी में डूब गया, ये क्यों हो गया ऐसा। हनुमान का जय प्रभु जी बात ऐसी है, हम तो आपका नाम लेकर के ये समुद्र के आप भाव सागर को आदमी पार कर सकता है, राम कहने की जरूरत नहीं, राधी कहने की जरूरत नहीं, उसके आभास से ही भाव सागर का आदमी तर जाता है नवाभास के द्वारा, फिर आपका नाम लेकर के क्यों नहीं तैरे, किंतु आप जिसको उठा करके फेंक देंगे अपने से दूर वो तो जरूर डूबेगा रस्सा तल। इसलिए ये पत्थर आपने फेंक दिया, अपने से हटा करके अपनी सेवा से वंचित कर दी और दूर फेंक दिया इसलिए ये डूब गया, ये तो डूबना ही है इसको। इसलिए जो राम का नाम करेगा वो तो जरूर सर जाएगा। ये जानते हैं राम नाम कहाँ का है? ये कृष्ण का नाम राम है। सर्वोच्च कोटि में जितनी शक्तियां हैं राम में, रमयति इति रामः, इसलिए ये कृष्ण का नाम है, क्योंकि ये जो दर्शक श्री राम है राधा जी के साथ में नहीं रह सकते, ये राधा रमण कभी नहीं हो सकते, किंतु जो कृष्ण है वो सीता जी के हृदय में भी, यहाँ तक कि समस्त लक्ष्मियों के हृदय में भी, यहाँ तक कि समस्त स्त्रियों के हृदय में, पुरुषों के हृदय में वो रमण कर सकते हैं कृष्ण, किंतु राम सब में कर सकते हैं, किंतु ब्रज के गोपियों के हृदय में रमण नहीं कर सकते हैं, इसलिए गोपी रमण राम का नाम नहीं हो सकता। किंतु हम देखते हैं कि हरे राम 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 हरे, यहाँ पर राम सब कौन? दशरथी राम नहीं है, यहाँ पर बलराम राम भी नहीं है, यहाँ तो राधा रमण है, गोपी रमण राम है। यहाँ उन्होंने दया करके अपने अवतार को, जो कृष्ण के अवतार राम हैं, उनमें थोड़ा सा ये राम नाम दे दिया कि आप जगत में सब जगह रमण करें, किंतु ब्रज में मत आइए, ब्रज में मैं हूँ राधा रमण, और समस्त जगत में भी, इसलिए ये राम नाम है। हम लोग जो करते हैं हरे कृष्ण, इसमें दशरथी राम या यहाँ तक कि बलराम भी नहीं आ सकते, किंतु यदि कोई नहीं जानता है तो भी जैसे तैसे भी करेगा तो उसका तो कुछ न कुछ तो फल जरूर ही होगा, संसार से उनको मुक्ति मिल जाएगी, किंतु बिना राधा रमण की कृपा से ब्रज में कोई नहीं प्रवेश कर सकता। ये राधा रमण राम की विशेष ये चीजें हैं। मान लिया, फिर अब चलते हम उत्तरकांड में, वनवास से लौट करके रामचंद्र जी आते हैं नंदीग्राम में, भरत हैं वो, मिलते हैं। जब राम और उनका मिलन हुआ भरत का, ऐसा प्रेम जगत में कहीं नहीं देखा गया। यहाँ पर दोनों भाई मिल रहे हैं गले से गले, वहाँ का पत्थर पिघल गया, जैसे कि आप अलालनाथ में देखते हैं महाप्रभु जी के स्पर्श पा करके वो पत्थर पिघल गया, और महाप्रभु के समस्त अंगों का चिन्ह वहाँ पर है ना। ऐसे जब जब ये मिलने लगे, आप लोग चित्रकूट में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर दोनों के चरण मानो पानी में लग रहे हैं, पानी जैसा, करंट जैसा पत्थर ही पिघल करके वो हो गया है, और उसमें उनके चरण चिन्ह हैं। मिलने के बाद में जबकि अयोध्या में पहुँचे, दूसरे दिन रामनवमी के दिन ही उनका राज्याभिषेक हुआ। रामचंद्री का जन्म नवमी को, चैत्र सुदी नवमी, और उनका वनवास भी उसी दिन, और उनका गमन आगमन और राज्याभिषेक फिर एक ही दिन में हुआ। जब 11,000 वर्ष बीतने को हैं, रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। एक दिन कैकई मैया रोती हुई उनके पास में आई, बोली जी बेटा मैं तुम्हें क्या कहूँ अपने हृदय की दर्द की बात, दुख की बात। मैं देखती हूँ कि तुम हम मुझे मैया कहता है, लक्ष्मण जी कहता है, शत्रुघ्न भी हमको कहता है, किंतु आज कितने वर्ष हो गए, करीब करीब 1,000 वर्ष हो गए, भरत ने मुझे मैया नहीं कहा और न हमारा चरण छुआ, न प्रणाम करता है न कुछ। मैं मर नहीं जाती, ये ना जाने क्यों नहीं मरती। तो एक बात तुम अपने छोटे भैया को कहो, भरत को, जब मैं मरने वाली हूँ मुझे एक बार मैया कह दे, अंडरस्टैंड, मैया कह दे। राम ने कहा जी अच्छी बात है, मैं उसे समझाता हूँ, तो तुम्हारी बात वो डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए जरूर हमको कह देगा। रामचंद्र जी ने बुलाया भरत जी को, भैया एक बात, तुमसे आज तक मैंने कभी कुछ कहा नहीं, तुमने हमारी प्रचुर सेवा की, हमारी प्रति बात को माना, किंतु मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, तो यदि कहो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, वो तुम करेगा तो। भरत जी ने सोचा बहुत इंटेलिजेंट है, आज से 11,000 वर्षों में इन्होंने ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं मांगा, आज कुछ मांग रहे हैं क्या बात है? उन्होंने सोच करके कहा, भैया जी मैं आपकी सब सारी बातें मानूंगा, केवल एक बात, कैकई राजरानी कैकई को मैं मैया नहीं कर सकता, इसका अतिरिक्त आप जो कुछ कहें क्यों नहीं। जिनके प्रियन राम वैदेही तजिय कोटि वैरीशम जद्दप परम शनेही, तजयु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजव कंत ब्रज बनितन भय जग मंगलकारी। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय तुलसीदास। मीराबाई के घर के लोग उनको भजन नहीं करने देते थे, उसको बीस दिया, सालग्राम के नाम पर उनको सांप भेजा काटने के लिए, उसको मारने की चेष्टा की, तो उसने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को, जो आप इस समय में बहुत अच्छे संत हैं, घर वाले हमको भजन नहीं करने देते, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं घर में रहूं या वृंदावन चली जाऊं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, इसलिए हमको उचित परामर्श दीजिए। तो तुलसीदास जी ने ये पोएम लिख करके भेजा, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए के ओटी बैरी समझत पनमश नहीं, जिनको राम और वैदेही अथवा कृष्ण और राधा जी, राधा और कृष्ण जिनको प्रेम प्रिय नहीं है, जो उनका भजन नहीं करता और उनके भजन में बाधा देता है, तो कोटि बैरी डेमन के समान, असुर के समान मुझको त्याग करने चाहिए, कोई भी हो। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, किस लिए? भगवान का द्रोह आचरण करता था, उनका भजन नहीं करने देता था। भरत महतारी, मैया ने किस मैया को किसने प्रत्याग किया? मैया का प्रत्याग नहीं करना चाहिए, मैया के प्रति सब समय आदर रखना चाहिए, किंतु भगवत विरोधी हो तो उसको भी छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ो, जो गुरु गुरु की बात नहीं मानता, गुरु द्रोही है, अथवा वैष्णव का द्रोही है, वैष्णव की निंदा करता है और अपने गुरु के प्रिंसिपल्स के अनुसार में नहीं चलता है, ऐसे गुरु को भी फुट वाल्व की तरह में किक लगा करके उसे दूर कर दो, उसे कोई संबंध मत रखो, जो भगवान के भजन में हमें सहायता नहीं देते, ऐसे गुरु की जरूरत क्या है? गुरु माँ नहीं है तो उसे भारी और कोई नहीं, जो कृष्ण की प्रेम को दे सके वो गुरु है, और जो ऐसा नहीं कर सकता, विघ्न बाधा देता है, वैष्णव की निंदा करता है, तो प्रिय से प्रिय भी व्यक्ति हो, गुरु भी हो, तो उसको भी ठुकरा दो, उसे भी कोई संबंध मत रखो यदि कृष्ण का प्रेम चाहता है। और अपनी अपने पतियों को भी छोड़ दिया, किसने? पतियों को छोड़ दिया, गोपियों ने, भगवान का भजन करने के लिए। भय जग मंगलकारी, उनका मंगल ही मंगल हुआ। तो भरत जी का यह आदर्श ठीक है, रामचंद्र जी उनके भाई ही केवल नहीं है, वो भी भगवान है, इसलिए भगवान का यदि विरोधी कायकई करती है अपनी प्रिय माता, उनसे कोई भी संबंध नहीं है। लक्ष्मण जी भी ऐसे थे, शेष जी बलदेव जी हैं ना, उन्होंने दशरथ महाराज को, आज महाकामी राजा है, इसको बुद्धि नहीं है, जो राम को वनवास दे रहा है ये नहीं कर रहा है, मत जाओ। नंद बाबा थे, वसुदेव जी, वसुदेव जी ने कंस के सामने प्रतिज्ञा की थी कि जितने बेटे हमारे होंगे तुमको देंगे, किंतु कृष्ण पैदा हुआ तो दिया, भगवान की बात मानी। ऐसे ही ये निरपेक्षता है, ये भक्ति का राज्य है। सत्य वो नहीं है, महाराज जी थोड़ा सा दशरथ महाराज वहां पर भूल कर गए, वसुदेव जी वहां होते, नंद बाबा होते, क्या करते? कहे तेरी बात नहीं मानता, हमने जो बात कही थी वो भी झूठ हो जाए, हम तो भगवान के प्रीति के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपनी बातों को भी उलाट सकते हैं, इसमें कोई भी अर्ज नहीं है। मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, भगवान के निमित्त यदि कोई कुछ भी करता है, ऊपर से यदि धर्म का विरोधी भी है तो वही धर्म है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा मारो इन सबको, इन आतताइयों को, उन्होंने मारा, उनका कोई भी हानि नहीं है। किसी को मारना नहीं चाहिए, अपने गुरु को नहीं मारना चाहिए, द्रोणाचार्य को मारा ना, भीष्म पितामह उनके अपने हैं, उनको भी मारा किस लिए? कृष्ण के प्रीति के लिए उन्होंने किया। इस तरह से भगवान की सेवा में यदि कोई आता है तो वो परम धर्म है, इसलिए उनको जो प्रत्याग कर दिया भरत जी ने भी अपनी मैया को। रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए और गले से लिपा लिया। ऊपर से आदर्श दिखलाने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए इन सब चीजों को सिद्धांत को याद रखना चाहिए। गुरु हमने बनाया किस लिए? इसलिए कि कृष्ण प्रेम होगा, हम भगवान का भजन सुनेंगे और उनसे शिक्षाएं लेंगे। यदि वही गुरु कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, गुरु भगवान की कोई जरूरत नहीं है, वैष्णव की निंदा करता है तो ये पहला वैष्णव का ये शतांग निंदांग, गुरु का अवज्ञा ये दूसरे नंबर में आया। पहले आया क्या? शतांग निंदा। किसी भी स्थिति में वैष्णव की कोई निंदा नहीं होनी चाहिए। वैष्णव कौन? अरे वैष्णव मंत्र में दीक्षित होकर के जो विष्णु की उपासना, कृष्ण की उपासना, राम की उपासना, सभी वैष्णव हैं। जो एक नाम भी अपने जीवन में करता है, अभी दीक्षित नहीं हुआ, उसको भी वैष्णव समझो। कहा कृष्ण जस ग्रिंग तंग मनासित, ये हमको अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि भगवान का प्रेम चाहते हो तो किसी वैष्णव को, यदि उसके क्रियाकलाप को नहीं समझते हो तभी उसकी निंदा खबरदार मत करो, नहीं तो भक्ति देवी तुमको कान पकड़ करके बाहर कर देंगे। और चलिए थोड़ा सा आगे, रामचंद्र जी ने सीता जी को लक्ष्मण के हाथों से वनवास दे दिया सदा के लिए। किस लिए? एक धोबी ने कहा अपनी पत्नी को, जो तू 8 बजे 9 बजे रात में आई है, मैं राम नहीं हूं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, और ऐसा करके 1 लात उसे मारा और घर से बाहर कर दिया। रामचंद्र जी के खौफिया पुलिस आए और बतलाया कि देखो तो ऐसी बात है, ऐसा वो कर रहा है खौफिया, मैंने धोबी कर रहा है, राज्य में और भी कुछ बातें ऐसी आई क्या है? शुभानंद सुनिए, गाड़ी तेज हो ताप रेखन से दो। जाओ सब नियस आमी ओखने आज जाबो ना हम यही तो when you will return I will finish। रामचंद्र जी ने सुना ये धोबी तक हमारी निंदा कर रहा के लिए और शिक्षा के लिए सीता जी का उन्होंने प्रत्याग किया। लक्ष्मण जी उनको लेकर वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे, गंगा के पास ही में था, गंगा जी को पार किया और नौका में जब उतरने का समय हुआ तो लक्ष्मण जी रोने लगे, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। सीता मैया ने कहा अरे देवर तुम रोता क्यों है? तुम एक दिन भी राम का विरह नहीं सह सकता, जब मैं सह सकती हूं तो तुमको भी सहना चाहिए। उन्होंने भाभी जी मैं इसलिए नहीं रोता, मैं इसलिए रोता हूं कि राम ने आपको सदा के लिए प्रत्याग कर दिया है, क्योंकि उन पर लांछन लगता है कि जो पत्नी रावण की यहां रही और फिर उसको साथ में ले रहे हैं, इसलिए इस कलंक को धोने के लिए आपको सदा के लिए आजीवन उन्होंने प्रत्याग कर दिया, मैं आपको छोड़ने आया हूं। सुनते ही विलाप करने लगी और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। गाने और कपड़े ऋषियों की पत्नियों को देने के लिए ले आई थी, उसको उतार दिया लक्ष्मण जी ने और उनको भी उठाकर और उनको रख दिया और उनको उसी अवस्था में मूर्छित अवस्था में रख करके और चले आए निष्ठुर होकर के। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं छोटा भाई होकर के नहीं आऊंगा, क्योंकि ये कष्ट देते हैं और जो इच्छा होती है वही हमको आदेश देते हैं। और मैं बड़ा भाई होकर के आऊँगा, इसलिए पीछे के जन्मों में कृष्ण जब होकर के आए तो बड़े भैया बलदेव होकर के आए, और महाप्रभु जी आए तो नित्यानंद प्रभु बड़े होकर के आए। जो ऐसा गलत फलत हमको आदेश देंगे मैं नहीं पालन कर सकता। इसीलिए अब वहाँ से लौट करके चले गए। सीता जी बेचारी मूर्छित पड़ी रही, जब जगी तो अकेला देख करके और डकट डकट कर रोने लगी। वाल्मीकि जी तो पहले से जानते थे, बस वो आकर के सीता जी को अपनी बेटी मान करके ले गए और अपने महिला विभाग में उन्होंने रख दिया, जहाँ पर कि बहुत सी तपस्विनी थी वहीं पर लौकुश दोनों पैदा हुए। तत्पश्चात उनको शिक्षा दी गई, सीता जी अपने हाथों से धनुर्बाण की शिक्षा उनको दी लौकुश को, और पूरा रामायण वाल्मीकि जी का उन्होंने पूरा समाप्त किया और इन दोनों बच्चों को पढ़ाए। इनकी वर्ष जब 8-9 वर्ष की हो गई, दोनों जमज से एक साथ में पैदा हुए। बड़ा ही सुंदर शरीर, ये गला का स्वर था बहुत ही मधुर, देखने में कैसे खूबसूरत, राम से भी अधिक सुंदर, क्योंकि राम के बेटे हैं ना। रामचंद्र जी तो जुआ हो गए हैं, उनकी उम्र 11,000 वर्ष की, और ये अभी 8-9-10 वर्ष के बच्चे बड़े सुकुमार सुंदर मधुर, गला क्या सुंदर, वीणा दोनों लिए हुए, तपस्वी वेश में, सिर की यहाँ पर केश बंधे हुए, और जबकि गायन करते तो सभी लोग मुग्ध हो जाते। एक दिन वो गायन करते 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 नैमिषारण्य में पहुंचे, जहाँ राम लाखों लोगों को लेकर के वहां पर रायसी यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए थे। महाराज श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी हम आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ रायसी। उन्हें तुम यज्ञ करने के योग्य नहीं, क्यों, अपनी स्त्री को निकाल दिया है बिना किसी कारण, अपनी स्त्री को बुला लाओ, सीता जी को यज्ञ करो, अकेले नहीं कर सकता, ऐसा शास्त्र में विधान नहीं है। मैंने महाराज जी ऐसा मत कीजिए, अपनी मरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, आप ऐसी कोई व्यवस्था दे जिससे कि मैं यज्ञ कर सकूं। तो अच्छा एक बात कर, उस स्त्री को छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी ने तो 300 शादियाँ की थी, 360, तो तुम एक और किसी लड़की से शादी कर लो, और सभी राजा लोग भी अपनी लड़की तुमको देने के लिए राजी हों, अपना सौभाग्य समय, इसलिए तुम किसी से शादी, ये भी नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँ, तो फिर यज्ञ कैसे करेगा, नहीं कर सकता, कोई उपाय बतलाइए। अजय अच्छा एक बात करो, सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाओ और अपने बाएं रख करके पूजा कर सकते हो और राजसी यज्ञ कर सकते हो, ये मंजूर है, असली सीता को लेकर के नहीं, स्वर्ण सीता को लेकर, स्वर्ण की सीता बनाई गई, रायसू यज्ञ हुआ। रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उनके वशिष्ठ के द्वारा उच्चरित मंत्र से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। वशिष्ठ जैसे लोग, वशिष्ठ जी ही गर्गाचार्य हैं ऐसा समझो, तो ये वशिष्ठ जी ने मंत्र उच्चारण कराया, रामचंद्र जी ने अपने हाथों से मंत्र उच्चारण पूर्वक उनकी प्राण प्रतिष्ठा की हो तो सीता जी जीवित नहीं हो जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ में वो ऐसी हो जाती है। अब उनको साथ लेकर के यज्ञ हुआ। यज्ञ का नियम यह था, सवेरे 10 बजे तक यज्ञ होगा, सवेरे 6 बजे से, और दोपहर में छुट्टी रहेगी, उस समय भगवान की कथा पुराण इत्यादि का श्रवण किया जाएगा। इसलिए यज्ञ समाप्ति के बाद में, जबकि अब पुराणों का सुनने का समय आया, तो सभी लोग राज दरबार भरा हुआ था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी सिंहासन पर विराज रहे, रामचंद्र जी बीच में खड़े थे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न और राम, ये भरत जी उनको चमर डुला रहे थे, पंखा दे रहे थे, और चरणों के नीचे हनुमान जी उनका चरण दबा रहे थे। सुग्रीव नल नील अंगद इत्यादि थे, मैया कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी भी वहां पर बैठी थी। दोनों बच्चे आए और जब गायन करने लगे, कौन सा महाराज दशरथ गत हो गए हैं और कैकेयी उनको वनवास दे रही है, उनको चीर वस्त्र पहना रही है। सीता जी का समय आया है कि सीता जी को चीर वस्त्र पहनाया जाए। उस समय में वाल्मीकि वशिष्ठ जी कहते हैं कि अरे तूने तो इसके लिए तो वर नहीं मांगा, राम के लिए वर मांगा, इसलिए रामचंद्र जी वो बलकल वस्त्र पहनेंगे, सीता जी नहीं। उस समय कैकेयी का मुख सूख गया और उसमें सारी सभा रोने लग गई। ऐसा कोई नहीं जिनके आंखों में आंसू नहीं हो उस समय वनवास का दृश्य देख करके। सारी अयोध्या राम के साथ में चलने के लिए, वनगमन के लिए तैयार हुई। उसी का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते 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 कौशल्या जी रोने लग गई।
बस अब आरती होगी तब खत्म कर दें, थोड़ा सा समय किंतु अब आरती का समय हो गया, डिस्टर्ब हो जाएगा।
बहुत ही हृदय द्रावक, बहुत ही सुंदर ये था, तो हम नहीं कर सका। गौ प्रेमानंदे, क्योंकि ये आरती होगी, आरती में समय में हम लोगों को उठ करके अभिवादन करना चाहिए। बस
नारायण महाराज की।